नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे विमानन क्षेत्र से जुड़े 77,00,000 रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये योजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। इस कार्यक्रम में 480 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।